ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हन्ताय वज्रिरबला हरिदासवर्यो जद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्जत् पानीयसु यवसकन्दरकन्दमूलैः हन्ताय मद्रिरबला हरिदासवर्य जद्राम कृष्णचरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्जत् पानीयसु यवसकन्दरकन्दमूलैः हन्ता। ओहो, कितने आनंद की बात है। अयं यह अद्रिहि श्री गोवर्धन अबला हे सख्य हरिदास वर्जह भगवान विष्णु के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ। जद क्योंकि राम कृष्ण चरण श्री राम और कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोदः प्रकृष्ट आनंद वाला मानम सत्कार तनोति विस्तार करता है देता है सहगो गणयोः गौओं और गोप सखाओं के साथ तयोः उन दोनों के श्री कृष्ण बलराम के जात जिक्यों के पानीया पीने योग्य पदार्थ जैसे मधु और पानी इत्यादि सुयवसा सुंदर सुंदर घास कंदर गुफा कंद कंद मूल ही और मूल द्वारा यहां पर बेड़ू गीत की कथा चल रही थी एक सप्ताह चली थी इसमें से एक श्लोक की कथा बाद में मधुबन में हुई थी आज उसी कथा का एक श्लोक ले रहे हैं क्योंकि श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी सभी श्लोकों की संगति बैठने को नहीं कहते हैं तो कहते हैं कि अलग अलग जीत का अलग अलग गोष्ठी में सखियों का कहा हुआ वाक्य है तो आज श्री गोपी जनों के मुखारविंद से श्री गिरिराज गोवर्धन जी की महिमा का वर्णन किया जा रहा है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह श्लोक श्री गोपी जनों का बोला हुआ है जिनमें श्री राधा रानी प्रधान है तो श्री गोपीजनों के कृष्ण प्रेयसियों के मुख से गिरिराज जी के सौभाग्य की गाथा गाई जा रही है। हे सखी, हम तो अति मंद हैं, हमारा भाग्य फूटा हुआ है, हमें श्याम सुंदर के चरण कमल के स्पर्श का सौभाग्य नहीं मिलता है, लेकिन देखो कितना सुकृति है, धन्याति धन्य है यह पर्वत जिसे श्री कृष्ण और श्री बलराम के चरण कमल के स्पर्श के कारण सदा आनंद रहता है, सदा प्रमोद रहता है। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, हंत इतिहास अबला, यहां से चालू करेंगे, हे अबलाओं, श्री कृष्ण के मिलन की लालसा से ये व्यग्र हैं और श्री कृष्ण से विरह हो रहा है, नहीं मिल पाते हैं सदा, तो चौबीसों घंटे चाहते हैं कृष्ण के साथ रहे। तो कृष्ण के विरह की भावना से वे कमजोर हो गए हैं, स्तंभ एक विकार है, अष्टसत्विक विकार। तो अबला, हे अबला, ऐसा अबला का अर्थ है हे स्त्रियों, हे सखियों, लेकिन यह इसलिए बात कही जा रही है कि हे सखियों, जिसके विरह में तुम लोग इतनी दुबली हो गई हो, उस श्याम सुंदर के संयोग का सदा सौभाग्य मिलता है इस अद्री को। यह अद्री का अर्थ पर्वत। तो हंत इति हर्ष, हंत शब्द आनंद में व्यक्त कर रहे हैं। हंत का प्रयोग या तो विस्मय में या दुख में या हर्ष में होता है, यहां आनंद में खुशी में हंत शब्द निकल रहे हैं। देखो कितने आनंद की बात है। अयम अद्रिहि, यह नाम नहीं रख रहे हैं, यह पर्वत। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी यहां लिखे हैं कि इससे सिद्ध होता है तो श्री गोपीजन गोवर्धन जी के पास में निकट ही है, जहां से वे अपने श्रीमद अंगुली से दिखा रही है। अयम अद्रिह, तो ऐसे दिखा रहे अयम अद्रिह, या एक अंगुली से हे सखी। इसी अंगुली को अगर ऐसे दिखाया जाए तो इसका तर्जन अर्थ होता है, लेकिन निर्देशनी भी इसको कहते हैं। तो श्री राधा रानी अपने श्रीमद अंगुली से श्री गिरिराज जी को दिखा करके कह रहे, थोड़े दूर पर है, बहुत दूर नहीं है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते, श्रीमद अंगुल्या दर्शयति, उंगुल्या दर्श लेना, अंगुली से संकेत कर, इसलिए अयम अद्री, यह पर्वत। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं श्री गोवर्धन, यह नाम क्यों नहीं रख रहे हैं, कहना चाहिए गोवर्धन, कि अयम अद्री यह पर्वत। इसका अर्थ मैं आगे करूंगा, और जो श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने किया है तो संकेत कर देते हैं हिंदी में कि सखिया ये कह रही हैं कि यह पर्वत, इसका तीन अर्थ है। एक तो ये है कि वे कहीं निकट में है, जहां से दिखा करके कह रही है, एक अर्थ है अयम अर्थ। दूसरा अर्थ है कि भगवान श्याम सुंदर का, श्री कृष्ण का अति प्रिय क्रीड़ा भूमि होने के कारण यह गोवर्धन भी उसी तरह से गोपीजनों के हृदय में स्फुरित होता रहता है जिस तरह से बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर स्फुरित होता है। इसलिए अयम शब्द का प्रयोग करें, उनके हृदय में उदित है। हो सकता है अपने गांव में है, घर पर है, लेकिन अयम अद्री कहने का एक दूसरा अर्थ ये है कि उनके हृदय में श्याम सुंदर की तरह गिरिराज गोवर्धन विराज रहे, इसलिए अयम अद्री। और अद्री तो नाम क्यों नहीं रखे, तो इस पर कहते हैं कि परम आदर भाव होने से श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए अयम अद्री कह रहे हैं, ये पर्वतराज, ये गिरिराज, इस तरह से कह रहे हैं, नाम नहीं रखना चाहिए, इसलिए आदर के लिए नाम नहीं रखना चाहिए। सिद्धन स्वामी सेनपुरा का अयम अद्रि गोवर्धन ध्रुवम हरिदास सुवर्ज श्रेष्ठ निश्चित श्री गिरिराज जी गोवर्धन जी भगवान के जितने भी भक्त हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हरिदास वर्ज क्यों कैसे कह रहे हैं इति अत आह जस्मात राम कृष्णयो चरण स्पर्शेन प्रमोदो जस्य स श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के चरण कमल के स्पर्श से इसको हमेशा प्रकृष्ट आनंद छाया रहता है। हम तो विरह में मरती रहती है सखी श्याम सुंदर के, लेकिन श्याम सुंदर का संजोग चरण कमल सदा इनके देह पर रहता है, किसी न किसी कुंज में पत्थर पर कहीं न कहीं पड़ा रहता है, इसलिए इनको प्रकृष्ट मोद है। अच्छा, दूसरा कारण यह है इनके धन्यता का, एक सबसे श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों का यह स्वभाव होता है वे भगवदीय का कृष्ण के जो संबंधी है उनकी बहुत सेवा करते हैं। तो श्री कृष्ण के गोप सखा और उनकी गौए दोनों को और कृष्ण बलराम को ये बहुत चीज देते रहते हैं, बहुत चीज देते रहते हैं, जैसे पानीय सुयवस कंदर कंदमूल है, पांच चीज का नाम रख रहे हैं, उपलक्षण से बहुत चीज समझना चाहिए। पानीय ये गिरिराज गोवर्धन पानीय देते हैं, पानीय पानीय पान शब्द से पानीय बना है, पान का अर्थ है पीना, पानीय पीने योग्य, पानीय का अर्थ होता है पीने योग्य, लेकिन हम लोग जल को ही पानी पानी कहते हैं। पानीय पेय जल व्य शुद्ध जल को पेय जल कहते हैं, तो बंगला में पानीय सीधा तो कहते पानीय जल पीने योग्य जल, लेकिन पानीय का अर्थ ही है पान करने योग्य पानीय। तो गिरिराज जी पीने योग्य चीज देते हैं, एक तो मधु देते हैं, वृक्षों से मधु बहुत निकलते हैं तो मधु देते हैं, किसको देते हैं जथाजोग समझ लेना चाहिए, मधु देते हैं भगवान के सखाओं को और कृष्ण बलराम के साथ, कृष्ण को देते हैं बलराम जी को देते हैं और सखाओं को देते हैं। और सुजवस जवस मतलब गवत घास देते हैं, किसको देते हैं गौओं को, सुजवस का अर्थ है कोमल स्वादिष्ट घास देते हैं जो शारीरिक बल बढ़ाता है घास, और इसके साथ साथ दुग्ध संपादकानी दूध को बढ़ाता है, गौओं के दूध को जो बढ़ावे और उनकी शक्ति का वर्धन करे उसको सुई जवस, जवस का अर्थ होता है तृण घास और सु का अर्थ सुष्ठ अच्छा बहुत अच्छा घास देते हैं। कंदर कंद मूल ही और कंदर गुहा गुफा गुफा देते हैं जिसे बच्चे खेलते हैं छिपते हैं, तो यही गिरिराज जी हैं जो श्री गोपी जनों को भी अवसर देते हैं प्रियतम श्याम सुंदर से मिलने के लिए गुफा में, और सखाओं के साथ तो छिपते हैं लुका छिपी का खेल करते हैं। बताइए जिसके हृदय में साक्षात भगवान विराजते हैं तो छू रहे हैं, वो पत्थरों को छूते होंगे इधर छिपते होंगे, जिसके अंक में कृष्ण छिपते हैं या सोते हैं, और गुफा से यहां तात्पर्य है कि उस गुफा के भीतर खूब सुंदर भवन का आकार गिरिराज जी बनाए हैं और उसमें बहुत सुंदर रत्न का बना हुआ पर्यंक भी रहता है कृष्ण के विश्राम के लिए और श्री राधा रानी के विश्राम के लिए भी, और सखाओं के यथाजथ समझ लेना चाहिए अलग अलग सख्य लीला माधुर्य लीला में, और अनेक गुफाएं हैं, गुफाओं में पर्यंक बिछा हुआ है बहुत सुंदर आस्तरण कोमल गद्दा है, इसके साथ साथ चामर व्यंजन और कई प्रकार की खाने की चीजें और आदर्श शीशा श्रृंगार की जो भी सामग्रियां हैं गिरिराज जी प्रस्तुत कर देते हैं। गुफा का अर्थ केवल ऐसे बस अंधकार से भरा हुआ एक पत्थर विशेष नहीं है गुहा। और कंद मूल ही, कंद और मूल एक, इसमें अवांतर भेद है। अवांतर भेद का अर्थ होता है जैसे कोई एक ही जाति का हो लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, समानांतर भेद नहीं है। समानांतर भेद का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा शुरू से ही भेद है। कंद और मूल, कभी कभी मूल को भी कंद कह देते हैं, कंद को भी मूल कह देते हैं, जो जमीन में बैठता है इसको गिरिराज देते हैं। तो कंद तो प्रसिद्ध है और मूल अनेक प्रकार के औषधियों के वृक्षों के मूल होते हैं, तो खाने पर एक तो आरोग्य करते हैं, कठिन से कठिन रोग दूर हो जाते हैं, हर्द देते हैं, वो तो मूल है। और भोजन भी केवल औषधि नहीं, भोजन होता है उसे कंद मूल से। इस तरह से गिरिराज देते हैं। अब जथा जो समझ लेना चाहिए, सबको ये शाखाओं को देते हैं। और गौओं को तो घास और पत्ता यह पसंद पड़ता है, तो उनको ये चीज देते रहते हैं, इसलिए ये धन्याति धन्य है सखी गिरिराज के बाद। हे अबला अयम अद्रिहि पर्वत श्री गोवर्धन हरिदास वर्ज, भगवान को यहां हरि क्यों कहा गया? यह हरि का अर्थ श्री विष्णु या श्री कृष्ण दोनों ही है। भक्तों को इन बातों को समझ लेना चाहिए। किसी किसी को शंका होगी कि क्या गोपीजन भगवान कृष्ण के भक्तों में श्रेष्ठ उनको कह रही हैं? हां, उनको पता है गर्गाचार्य जी के मुख से सुन करके, या गर्गाचार्य जी के मुख से या और पौर्णमासी जी के मुख से, और जो ब्रज की विदुषी स्त्रियां हैं वे वर्णन करती रहते हैं कृष्ण क्या है, श्याम सुंदर क्या है, तो साक्षात विष्णु है, स्वयं भगवान है। तो इन सब बातों की भी जानकारी है, इसको पूरा पूरा डिनाई नहीं किया जा सकता कि नहीं उनको जानकारी नहीं है। उनके वक्तव्य से रास लीला आदमी पता चलता है कि गोपियों ने पूरा पूरा समझा है कि श्याम सुंदर क्या है। वे कोई एक मनुष्य के लड़के हैं सुंदर इतना ही नहीं है, जैसा आप लोग गोपी गीत के चौथे श्लोक में पढ़ते हैं, नखलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहि नाम अंतरात्मते, विखण सारथी तो विश्वगुप्त सखौ दैवान सात्वताम कुले। हे सखे, आप केवल जसोदा नंदन ही नहीं है, आप समस्त प्राणियों के हृदय के अंतरात्मा के साक्षी हैं, और इस विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति ब्रह्मा जी ने आपसे अवतार के लिए प्रार्थना किया है, तो आप उनकी प्रार्थना मान करके विश्व का दुख दूर करने के लिए सातवत वंश में जन्म लिए। तो जानकारी है। तो हरि कहते हैं जो पाप को, दुख को और चित्त को, पापम दुखम चित्तम च जथा जथम हरति स हरि, जो हरे वो हरि हरि है। तो भगवान विष्णु को या श्री कृष्ण को हरि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हरते हैं, ऐसे बहुत बहुत चीज हरते हैं, हरण करते हैं, लेकिन तीन चीज हरते हैं। एक तो पाप, अनेक जन्म जित पाप चौरम, यह श्री कृष्ण का स्वभाव है। जो सूर्य का स्वभाव है अंधकार को नष्ट कर देना, ये स्वभाव अपनी सत्ता है। सूर्य कोई टार्च नहीं जलाता है या प्रयास नहीं करता है कि अंधकार को भगाया जाए, वो जहां आएगा भाग जाएगा। अगर सूर्य आया तो अंधकार को जाना ही है, इसको सूर्य का स्वभाव कहते हैं। श्री कृष्ण का ही स्वभाव है, उनसे या उनसे संबंधित किसी वस्तु से संपर्क किया जाए तो वे पाप का विनाश कर देते। पापम हरति स हरि, दुखम हरति स हरि, और पाप के कारण ही दुख होता है। किसी पर किसी प्रकार का संकट आ गया है, चाहे मानसिक संकट हो, शारीरिक संकट हो, पारिवारिक हो, या बाहरी समाज में कोई विघटन हो, कुछ भी हो, सारे दुख को वे हर लेते हैं। अपने आश्रित मात्र के, और आश्रित का क्या है, तो उनके नाम का उच्चारण करने पर भी, उनको प्रणाम करने पर भी भक्त के दुख का हरण कर लेते हैं, किसी के भी दुख का हरण कर लेते हैं, तो उनको हरि कहते हैं। और एक और श्रीपा सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, चित्तम हरति इति हरि, और चित्त हर लेते हैं, उनको हरि कहते हैं। इतना सुंदर है और इतना सुंदर बांसुरी बजाते हैं, उनका कपड़ा, उनका श्री विग्रह, उनकी मुस्कान, उनकी लीलाएं, उनकी चाल, उनका चित्तवन इतना माधक है, इतना आकर्षक है कि वे किसी को भी, यहां तक कि आत्मा राम मुनियों के भी चित्त को हर लेते, और की तो बात ही क्या है, फिर भी स्त्रियों के चित्त को हर ले, ये तो आश्चर्य की बात क्या है, सबके चित्त को हर लेते हैं। तो पापम दुखम चित्तम जथा जथम हरती स हरि, जथा जथम यहां लगाया गया है, समझ लेना चाहिए। अगर कोई दुखी है उसका दुख हर लेते हैं, अगर बहुत बड़ा पापी है तो केवल कृष्ण को एक बार प्रणाम करे या नाम उच्चारण करे उसके अनेकों जन्मों का पाप हर लेते हैं। और यदि वह श्री कृष्ण का प्रेमी है, गोपियां अपने भावों का छिपा करके बोल रहे हैं, यदि वो कृष्ण से प्रेम करता है तो उसके चित्त को हर लेते हैं, तो हम लोगों के चित्त को हरे हैं, गोपियों कहने का अर्थ है, इसलिए वो हरि है। उन्हीं के स्वभाव जैसा, हरि के स्वभाव जैसा ही जिनका स्वभाव होता है, जो उनके शरण में रहते हैं, उनको हरिदास कहते हैं। तो हरि के स्वभाव को धारण किए हुए हैं, हरि जैसा स्वभाव है, तो वे भी पाप को हरते हैं, वे भी दुख को हरते हैं, और वे भी चित्त को हरते हैं। भगवान हरि के जो दास हैं, और सेवा आदि तो बाद में आया ही हुआ है, ऐसे श्री कृष्ण के जो दास है, श्री विष्णु के दास हैं, उन दासों में हे अबलाओं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में यह पर्वत ही सबसे श्रेष्ठ दास, हरिदास सबसे बड़ा है। श्रीमद् भागवतम में तीन हरिदास की चर्चा है, एक श्री युधिष्ठिर महाराज, श्री उद्धव जी और श्री गोवर्धन। तो हरिदास राजर्षे राजसूय महोदय, जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वहां पर, कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में सबसे भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने राजसूय यज्ञ सफल कर लिया भगवान की कृपा से। तो हरि की कृपा से हरिदास युधिष्ठिर महाराज यज्ञ संपन्न किए और उनका यश तीनों लोकों में फैल गया, उन्होंने हरिदास कहा गया। और उद्धव जी के लिए कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराते हुए हरिदास उद्धव जी कई महीने ब्रज में रहे, गोपीजनों को भगवान की लीलाएं सुनाया करते थे, उनका दुख हरते थे। तो ये दो हरिदास हैं, तो तीन हरिदास की चर्चा है, एक श्री गोवर्धन, लेकिन तीनों में वैसे हरिदास तो अनंत है, जैसे श्री नारद जी आदि, ये सब अनंत अनंत हरिदास हैं। और समस्त हरिदासों में तीन मुख्य हैं, और तीन में श्री गोवर्धन जी वर्ज श्रेष्ठ, तो श्री उद्धव जी और युधिष्ठिर महाराज को संबंध करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि समस्त हरिदासों में तीन श्रेष्ठ हैं, युधिष्ठिर, उद्धव और श्री गोवर्धन, तो इन तीनों में भी सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन।
हरिदास वर्त जगत अशेषम पापम दुखम चित्तम च यथागथम हरति इति हरि तद अधिष्ठाता देव शास्त्र लोके च प्रसिद्ध तत्स्वभाव के सुदास सूत्र हरिदास हरि भगवान श्री विष्णु को हरि कहते हैं और श्री कृष्ण को भी हरि कहते ही हैं, ये तो प्रसिद्ध बात है। तो गोवर्धन के अधिष्ठाता देवता अधिष्ठात्री देवता जो है उनको हरि कहा जाता है, उनको हरिदेव कहते हैं। हरिदेव ये प्रसिद्ध है शास्त्र लोके च, लोक में भी प्रसिद्ध है और शास्त्र में तो प्रसिद्ध है। तो श्री कृष्ण से किस प्रकार अभेद है भगवान विष्णु का और गिरिराज जी का, तो इसको बज्रनाभ जी ने जब यहां पर श्री विग्रह पधरवाया गोवर्धन में तो उन्होंने हरिदेव नाम रखा, भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए। यह श्री विग्रह कानपुर के पास आज भी विद्यमान है, वो लोग फरवरी में गए थे दर्शन करने के लिए जो गिरिराज में रहते थे, उनको हरि कहते हरिदेव, देव का अर्थ पूज्य या क्रीड़ा प्राण लीला करने वाले, हरिदेव 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 का। तो भगवान श्रीकृष्ण के जितने भी भक्त हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ गिरिराज जी हैं गोवर्धन जी, तो इसका कारण दे रहे हैं। पहला कारण जब राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, राम कृष्ण जो हो चरण स्पर्शेन प्रकृष्ट मोद हर्ष रोमांच स्वेद अश्रुवादी स्वरूप तृण उद्गम आर्द्रता जल बिंदु श्रावादी लक्षण। श्री गिरिराज जी को हमेशा श्री कृष्ण और बलराम की चरण स्पर्श प्रमोद रहता है, प्रकृष्ट आनंद में रहते हैं। तो प्रकृष्ट आनंद में रहते हैं, कैसे तुमको पता है कि आनंद में रहते हैं, तो देखो रोमांच हो रहा है, अश्रु गिर रहा है और शरीर से सात्विक विकार प्रसवेद पसीना निकलता रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तृण का उद्गम हो ही रहा है, चरण का स्पर्श से तृण का उद्गम होता है, बहुत से घासें लहलहा जाती हैं और पानी रहता ही है, वैसे शिला पर बिना वर्षा के भी पानी जैसा हुआ रहता है, श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण पसीना होता है श्वेत, और झरना गिरता है कहीं कहीं छोटे छोटे झरने बड़े बड़े झरने तो अश्रु निपात। तो वैष्णव जो हरिदास वर्ज हैं श्री कृष्ण का स्मरण करके या श्री कृष्ण का गुणगान करके श्रवण करके भक्तों के ये विकार होते हैं, इनको तो 24 घंटा विकार रहता है। गिरिराज जी को शरीर में पसीना आना, रोम का खड़ा होना, रोमांच अंश का अर्थ होता है खड़ा होना, अंश रोम अंश अंश का अर्थ होता है ऊपर होना, रोम अंश रोए खड़े हो जाए, श्री कृष्ण का स्पर्श करके गिरिराज जी के सब रोए खड़े हैं। एक पर्वत के रोए क्या है, घासी तो है ना, तृण या लताएं या वृक्ष तब को रोम कह सकते हैं, इतने विशाल पर्वत के लिए वृक्ष भी एक रोम ही। तो इस तरह से रोमांच है, तो सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं रोमांच स्वेद अश्रु आदि स्वरूप तीन उद्गम आर्द्रता जलबिंदु श्राव आदि लक्षण इस तरह से होता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। और दूसरा कारण सहगो गणयो तयो हो पानी यशु यवस्कंदर कंदमूल मानम तनोति, कृष्ण की गौओं के लिए और कृष्ण के सखाओं के लिए और दोनों के लिए पानी ये पीने योग्य पदार्थ मधु और जल सुंदर तृण गुफाएं और कंदमूल आदि के द्वारा मानव तनोति इति सर्वैरन्य रपि क्रियमाणम विस्तारेण करोति विस्तारयति इति अर्थ मानव तनोति अधिकाधिक अधिकाधिक गौओं के लिए सखाओं के लिए कृष्ण बलराम के लिए ये देते रहते हैं इन सब वस्तुओं का अनेक प्रकार से श्रृंगार करके खूब सुंदर फर्स्ट क्लास की घास और गुफा जिस गुफा में एक भी कंटक नहीं एक भी सांप नहीं बिच्छू नहीं अपने ओर से बिल्कुल श्रृंगार करके रखते हैं ये गिरिराज जी का स्वभाव होता है चरण स्पर्श प्रमोद टीका में श्रीपाल सनातन गोस्वामी तो यहां तक कहते हैं कि कृष्ण और बलराम के कृष्ण बलरामयो चरणयो स्पर्शात प्रमोदो प्रमोदम ददाती ऐसा कुछ कहते हैं अपने स्पर्श से गिरिराज जी कृष्ण बलराम के चरण को प्रमोद देते हैं ये भी अर्थ किए गिरिराज जी की शिला जाड़े के दिन में उष्ण रहती है हल्का ठंडा बिल्कुल नहीं जाड़े के दिन में तो श्री कृष्ण और बलराम कभी कभी स्वयं अपनी इच्छा से चरण रख करके और कहते हाँ कितना अच्छा लग रहा है पत्थर गर्म हो गया है जाड़े के दिन में तो चरण को गिरिराज जी के स्पर्श से प्रमोद होता है आनंद होता है और वो तो आनंदित हो ही रहे हैं इसके साथ साथ कृष्ण बलराम के चरणों को भी प्रमोद मिलता है गिरिराज जी का स्पर्श करके और गर्मी के दिन में ग्रीष्म ऋतु में वो शिलाएं शीतल हो जाती है जब कृष्ण के चरण कमल या श्री बलराम जी के चरण कमल अनुभव करते हैं कि गर्म लग रहा है कहीं और जगह मान लीजिए वो भी एक व्यवस्था है कहीं पर श्रीकृष्ण के चरण कमलों में गर्मी लगे तो भी एक लीला में सुख देने के लिए ही है लेकिन फिर भी वहां से भाग भागवत कहीं धूली से भाग करके और पत्थर पर आकर के चरण रखते हैं क्योंकि पत्थर और तप्त होता है ना लेकिन गिरिराज जी ऐसे रहते हैं कि शीतलता देते हैं और जाड़े के दिन में गर्मी देते हैं तो श्रीकृष्ण जब गुफाओं में जाते हैं तो अपने हाथ से गुफाओं का स्पर्श करते हैं देखते हैं छिपते हैं यह चरण से तात्पर्य सर्वांग श्री विग्रह से भी है कोई इतना ही नहीं केवल चरण क्योंकि वो सोते हैं गिरिराज की गुफाओं में पर्वत पर बैठते हैं लेटते हैं तो उनके सर्वांग श्री विग्रह का स्पर्श होता है इसलिए गिरिराज जी सबसे श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों में और वास्तव में गिरिराज जी केवल भक्त ही नहीं है ये तो साक्षात भगवान है ये सब उपाख्यान है और सभी लोगों ने माना है गिरिराज जी स्वयं श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के भक्त भी है एक अद्भुत बात है कहीं वो दोनों है भक्त है श्री गोपी जन यहां उनको भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं अथवा एक अर्थ ये भी है कि भगवान हरि के जितने दास हैं सबके द्वारा ये वर्ज्य वर्णीय है इन्हीं का वर्णन करने से तो मतलब ये स्वयं भगवान है ये अर्थ है हरिदास ही वर्ज जितने भी भगवान के दास हैं उनके द्वारा वर्ज का अर्थ वर्ण करने जो सेव्य आराध्य श्री के तो ये भी अर्थ अच्छा तो जब गोपियां बोल रही हैं श्याम सुंदर के विषय में तो जैसे अक्षरवताम फलमिदम न परम विदाम पहला श्लोक था तो उसमें श्री बलराम जी का साथ वो वर्णन कर रही हैं तो श्रीपद जीव गोस्वामी जी वहां लिखते हैं कि अपने भाव का गोपन करने के लिए श्री बलराम जी का नाम रख रहे हैं, हमेशा साहसर्स दिखा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई ये न जाने कि कृष्ण के प्रति इसका स्पेशल अटैचमेंट है। सामान्य वर्णन जैसे सभी लोग प्रसन्न होते हैं कृष्ण बलराम से, गोवर्धन से, वैसे हम लोग भी हैं, तो कोई कटाक्ष न कर सके, क्यों कई लोग रहते हैं, इसलिए श्री बलराम जी का नाम रख रहे हैं। अर्थांतर एक अन्य अर्थ से, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है, राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। राम जो शब्द है वह कृष्ण का या चरण का विशेषण है। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, रमयति सर्वं सुखयति इति राम, जो सबको सुखी करे, रमा दे, उसको राम कहते हैं। या रमते विविधम क्रीड़ा करोति स राम, जो क्रीड़ा करे, विविध खेल करे, वो राम है। और अथवा दूसरों को सुखी करे, तो यो सर्वं रमयति स राम कृष्ण, जो सबको क्रीड़ा करते, सबको सुखी करते हैं, ऐसे कृष्ण के चरण के स्पर्श से गिरिराज जी आनंद में रहते हैं। यह चरण का विशेषण लाएंगे तो यौ रामौ कृष्ण चरणौ, यौ रामौ यौ कृष्ण चरणौ ताभ्याम स्पर्शे न प्रकृष्ट मोदो जससा। इसके बहुत अर्थ किए गए हैं। राम कृष्ण चरण, रमणीय कृष्ण के चरण स्पर्श से एक अर्थ ये हुआ। ये गोपीजनों के लिए सब अपना उनका रिजर्व भाव है, लेकिन बाह्य दूसरे लोग दूसरा समझे, तो परम रमणीय श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से हमेशा प्रकृष्ट हर्ष रहता है कि राजी। यह अर्थ यहां पर किए जो शुरू शुरू में उपक्रम करते हुए श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि अरि सखे, पुलिंदियों के भाग्य को तुम कह रही हो, वो तो बेचारी चर जीव है, घूमने वाली, जत्र जत्र सह चलते, जहां जहां श्याम सुंदर चलते हैं, इस वन से उस वन में, नदी के तट से पहाड़ पर, सब जगह, तो पुलिंदिया जाती है पीछे पीछे, और शिला पर और घास पर कहीं भी श्री कृष्ण के चरण से कुमकुम लगा होता है, तो घास से या पत्थर से कुमकुम उठा करके अपने मुख में लगाती हैं, तो वो तो चर है, ढूंढती है, जहां जहां प्रियतम श्याम सुंदर जाते हैं उधर वन में जाती हैं, उनके भाग्य को क्या कहना। देखो स्थिर होने पर भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने वाले होकर भी, स्थिर होकर के भी गिरिराज जी का भाग्य देखो। उनको तो इसके पहले पुलिंदियों के भाग्य की सराहना की गई, पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज रागर श्री कुमकुमेन दैतास्त्र मंडितेन, इसी प्रकार अहो जत्र जत्र कृष्ण प्रयाति तत्र तत्र प्रयाण समर्था नाम पुलिंदी नाम आसाम भाग्यम दूरे अस्तु, स्थिरो अयम श्री गोवर्धन परम भाग्यवान धन्यति धन्य इत्याहु हंत। स्थिर होने पर भी, एक जगह रहने पर भी श्री गोवर्धन परम भाग्यवान है। अयमिति तदानीम श्री गोवर्धनांतिके वत्ताशन निवासेन साक्षात अंगुल्य दर्शना, ये तुम्हें पहले कह चुका है। अयम शब्द का अर्थ जदवा श्रीकृष्ण प्रियम, श्रीकृष्ण प्रियतमत्व, श्रीकृष्ण प्रियतमत्व न तस्य ताशु सदा सखा देव परिस्मृत, श्रीकृष्ण के परम प्रिय है गोवर्धन, प्रियतम है, अतः श्याम सुंदर की तरह ही इनकी स्फुरणा हृदय में होती रहती है। क्यों परम आदरेण तन्नाम अग्रहणात् जगतो अशेषम पापम दुखम चित्तम यथाथम हरती इति हरि तत्स्वभाव के दासेषु मध्य श्रेष्ठ। उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं कहते हंत सख्यो महदाश्रयम बिना नैव मनोरथ फलती महत्वम च हरिभक्ता नामेव तेषामपि मध्ये श्री गोवर्धनो गिरीन्द्र एव मुख्य इति गार्गी मुखा स्मृत। कि हे सखियो तुम लोग अपने मन में मनोरथ रखी हो प्रीतम श्याम सुंदर से मिलने के लिए उनको देखने के लिए, लेकिन सखी शास्त्र कहता है लोक में भी प्रसिद्ध बात है कि महदाश्रयम बिना नैव मनोरथ फलति। महान पुरुष के महत के आश्रय के बिना मनोरथ फलता नहीं है। और महत्वम च हरिदासान में, और महत कौन है, किसको महान कहा जाएगा, जो हरिदास जो सखियां कह रही हैं कि महदाश्रय के बिना अभिलाषा सफल नहीं होती, मनोरथ सिद्ध नहीं होता है। और महत कौन है, महत्वम तू हरिदासा नाम है, जो हरिदास है वही बड़े हैं। और उसमें भी ये श्री गोवर्धन गिरीन्द्र यही मुख्य है हरिदासों में। हमने ऐसा गार्गी मुख से सुना है, हमने ऐसा सुना है, ये सबसे श्रेष्ठ भक्त है, तो क्यों नहीं इनके चरण का आश्रय लिया जाए। इनका आश्रय लेने से श्याम सुंदर से मिलन निश्चित होगा। ये वेणु गीत का सार जो है वास्तव में गोपियों के सौभाग्य का वर्णन किया जा रहा है। उनकी भावनाएं, उनका प्रेम प्रत्येक श्लोक में उद्धृत हो रहा है, चाहे वो गिरिराज जी में चाहे कहीं भी, सब जगह उसी की छाया दिख रही है। वैसे गिरिराज जी स्वयं प्रेमी है, परंतु जैसा वेणु गीत में कहा गया हरिणियों के लिए, पुलिंदियों के लिए, किसी के लिए, वास्तव में सभी धन्य है, परंतु सर्वोपरि धन्याति धन्यतम जो है वो गोपियां हैं। श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए बेचैन है। तो इसी को मनोरथ कर रहे हैं कि यदि तुम मनोरथ सफल करना चाहती हो तो सुनो। तद अद्य तत्रत्य मानस गंगा याम स्नात्वा तद अधि दैवतस्य श्री हरिदेव नामनो नारायणस्य दर्शनार्थं जाम। ऐसे करें, देखो हमें चले और मानसी गंगा में स्नान करेंगे। ये सब वन से भरा हुआ है, सचारों तरफ वृक्षों से भरा हुआ था, तो हम लोग छिप करके वन में जाएंगे, वहां स्नान करेंगे। तो इस पर प्रश्न होता है, फिर गुरुजन सास ससुर घर के लोग कहेंगे उधर क्यों गई, तो वहां गंगा मानस गंगा में स्नान करेंगे और स्नान करके वहां हरिदेव जी का दर्शन करेंगे, भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। और जब दर्शन करने जाएंगे तो ये कहेंगे कि हम अपने परिवार के सुख स्वाच्छंद के लिए, पति को निरोग रखने के लिए भगवान से विनय करने गई थी। गोपियां तो कह सकते हैं कि आप भगवान का दर्शन करने गई थी, विष्णु भगवान का, और परिवार के कुशलता की याचना करने। तो इसके लिए अगर लोग सुनेंगे कि हरिदेव जी का दर्शन करने गई थी, तो परिवार के लोगों को भी इसमें कोई विप्रपत्ति नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं। और गिरिराज जी का दर्शन करेंगी और उनके चरणों में प्रणाम करेंगी तो निश्चित ही हमारा मनोरथ सफल होगा। और वही श्याम सुंदर रहते ही हैं। तो इसलिए हरिदेव जी के दर्शन और मान गंगा जी में स्नान का बहाना करके चलो, तीर्थ में जा रहे हैं, गंगा जी में स्नान करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, और गोवर्धन की घाटी में शिखर पर जहां तहां कुंज में ही श्याम सुंदर होंगे, तो गिरिराज जी के आशीर्वाद से हमारा मनोरथ सफल होगा। यही कारण है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि आखिर गिरिराज जी की महिमा जो कुछ भी कह रहे हैं तो हरिदास के रूप में क्यों कह रहे हैं, इसीलिए कि इनके आशीर्वाद से हमारा मनोरथ सफल होगा। तो महदाश्रयम बिना मनोरथ नहीं फलती, मनोरथ फलता नहीं, महदाश्रय भगवान के भक्तों के आशीर्वाद के बिना, और भक्तों में सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन जी, इसलिए वहां चलो। वैसे तो व्याख्या बहुत बहुत है पढ़ने में, देर होगी। रामकृष्ण चरण स्पर्श पर श्रीजीव गोस्वामी प्रसाद जी, सनातन गोस्वामी प्रसाद जी बहुत लिख रहे हैं, जरा हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। जीव गोस्वामी अत्र च अक्षरवतान इति वक्त ये संस्कृत जानने वाले भक्त समझ जाएंगे। अक्षरवतान अत्र अक्षरवतान इति वक्त अवहित्यावपि अर्थांतर व्यक्तिर्जथा रामो नील चारु सीते त्रिषु इति अमरकोश। राम शब्द का अर्थ क्या है? राम शब्द के कई अर्थ किए गए हैं, उसमें अमरकोश में ये भी है। तीन अर्थों में राम शब्द का प्रयोग होता है, नील चारु और सीत त्रिशु, तीन में प्रयोग होता है। तो राम शब्द का यहां अर्थ चारु शब्द से, चारु का अर्थ सुंदर रमणीय, तो जो कृष्ण अति सुंदर है तो इसलिए उनको राम कृष्ण कहेंगे। कृष्ण शब्द का ही विशेषण है राम, गोपियों का अपना अर्थ है। तो रामो रमणीयो यह कृष्ण तस्य चरणयो स्पर्शेन प्रमोदो जस्य स, और तयो हो फिर कैसे बैठाएंगे, उधर जो आया है तो रामकृष्ण के लिए तयो है, तो तयो का अर्थ श्री प्रसन्नतम सभी कहते हैं चरणयो चरण अथवा गोगणयो, तयो गोगण के लिए, गौओं के लिए और गोपों के लिए तयो शब्द का प्रयोग है इस अर्थ के अनुसार। तो रामो रमणीयो यह कृष्ण तस्य चरणयो स्पर्शेन प्रमोदो जस्य स, तयो चरणयो जद्वा तादृश कृष्ण चरणयो, तयो चरण मैंने ऐसे चरणों के, तादृश चरणयो स्पर्श प्रमोदो जस्मा, स्पर्श तादृश चरण कृष्ण चरणयो स्पर्श प्रमोद, जस्मात् ऋतु अनुरूप शैत्यादि गुणकत्वेन स्वशिलानाम विधानात्। गिरिराज जी ऋतु के अनुसार अपने शिलाओं को कर लेते हैं, जाड़े में गर्म और गर्मी के दिन में ठंडा है। जद्वा रामम क्रीड़ा रूपम श्रीकृष्णस्य चरणम आचरणम तस स्पर्शेन स्पर्शनेन दानेन प्रमोदो जैसे सा। चरण का एक अर्थ श्रीपद जीव गोस्वामी जी कहते हैं, सनातन गोस्वामी का जी वही अर्थ किए। चरण का अर्थ है आचरण, आचरण का अर्थ है लीला। रमणीय कृष्ण के लीलाओं से गिरिराज जी को बहुत प्रमोद रहता है, और स्पर्शन का अर्थ होता है दान, चरण का अर्थ है आचरण लीला, और स्पर्श का अर्थ तो स्पर्शन दानेन दान, अपनी लीलाओं के दान द्वारा। गिरिराज जी में श्री कृष्ण अनेक लीलाएं करते हैं, तो रमणीय कृष्ण के चरण स्पर्श मतलब लीला दान द्वारा इनको प्रकृष्ट हर्ष रहता है। लीला होते इसलिए गोपी जनों के साथ भी भगवान जैसे दही का टैक्स मांगना, कर मांगना दान घाटी में, जैसे बरसाने की तरफ से श्री गोपी जन आती है, तो श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ वहां पर टोल टैक्स लेते हैं। वो क्या टैक्स है, इनकी कौन बपौती है, राज्य है, लेकिन फिर भी कहा यहां दान लगेगा। यहां देना पड़ेगा। और वैसे तो भक्तों ने बहुत बहुत बार लिखा है गोरस का दान मांग, गोरस का ही है, जैसे दूध है भी गोरस है, दही भी गोरस है, गोरस में गाय का रस, गाय जो रस देती है उसको गोरस का, घी भी गोरस है, छाछ भी गोरस है। इसके साथ ही साथ गोरस के अर्थ जो हमारे आचार्यों ने भी किया है, श्री कृष्ण चाहते हैं दर्शन श्री प्रिया जी का, आंखों के लिए रस चाहते हैं, गो मैंने इंद्रिया, इंद्रियों का रस चाहिए, उनकी बात देखना, उनकी गाली सुनना या उनका स्पर्श करना, या भी श्री कृष्ण का स्पर्श करना चाहती है, उनको देखना चाहती है, उसे बोलना, यह इतनी आनंदमय लीला है, खासकर दान मांगने की और उसको गिरिराज जी की घाटियों में गुफाओं में इधर उधर छकना, हम दही दान लेकर के रहेंगे, हम भूखे हैं यहां इतने दिन से, और भी हम बहुत पुण्य कर्म कर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं, इतना पवित्र काम कर रहे हैं, और गौओं का ही रस लेकर के तुम लोग जा रही हो, हम लोग दिन भर गाय चराते हैं, क्या यह अधिकार नहीं है इनको लेने का? तो जो झकझोरना है, आपस में छीना झपटी है बाह पकड़ करके, और मटकी पकड़ना, बाह पकड़ना, वास्तव में वो गाय का जो रस है वो भी तो प्रेममय है ही, परंतु उसको खाने की, उसको पीने की वो लालसा नहीं है उतनी, उसके बहाने से जो आपस में वाद विवाद है, झकझोरना है, अंग परसना है, यही सबसे बड़ा सुख है। और इतना आनंदमय है, ये एक बार की बात है, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के विरह भाव से इतने दग्ध थे कि लगता था कि प्राण छूट जाएगा, प्राण छूट जाएगा विरह की भावना करके। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद ने एक ग्रंथ लिखा दान के लिए कौमुदी, जिसमें दान लेने की लीला है गोवर्धन जी, और उस लीला में इतना संगम इस प्रकार की बातें दिखाई गई हैं कि विरह का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, बिल्कुल मिलन हो रहा है, छीना झपटी, या इसके साथ साथ अंतरंग विहार, होली लीला या झूलन लीला, गिरिराज जी के घाटियों में पहाड़ में झूलन लीला हो रही है, और कई कई प्रकार की लीला, होली लीला, वन विहार, लुका छिपी का खेल, और श्रृंगार, फूलों से श्रृंगार करना श्री कृष्ण का, प्रियतम का। तो इस तरह से प्रिया जी का जब मिलन देख सुना तो उनका विरह भाव समाप्त हो गया, ऐसा होने लगा कि मैं तो बिल्कुल संजोग में ही हूं, गोपियों के साथ विरह हुआ ही नहीं, इतनी आनंदमय लीला है। तो ये गिरिराज जी में ही संपन्न होती रहती। मैं कहां से पढ़ रहा था, जीव गोस्वामी के पढ़ रहा, तो वही अर्थ कर रहा था, जदवा रामम क्रीड़ा रूपम जब श्री कृष्णस्थ चरणम आचरणम स्पर्श स्पर्शे न स्पर्श ने न दाने न प्रमोदो जस। तो श्री गिरिराज जी को ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण के और श्री बलराम जी के ही चरण कमल का स्पर्श प्राप्त है, श्री गोपीजनों के, श्री सखाओं के, और इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण की जो सेंट्रल लीला है, महत्वपूर्ण सारी लीलाएं जो हुई है वो गिरिराज जी के आसपास हुई है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि समस्त विश्व ब्रह्मांड में यह ब्रजमंडल श्रेष्ठ है, मधुपुरी श्रेष्ठ है, मथुरा श्रेष्ठ है, मथुरा मंडल, और उसमें भी गिरिराज जी श्रेष्ठ है, और गिरिराज जी में भी राधा कुंड का सेक्शन सबसे कुंड, ये भगवान की प्रिय लीला भूमि है गिरिराज जी। इस तरह से श्री गोपीजन गिरिराज जी के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, श्री कृष्ण के रमणीय लीलाओं के दान द्वारा इनको प्रकृष्ट हर्ष रहते हैं। बताए जिसके देह पर और जिसके उदर में या छाती में सब जगह श्री कृष्ण लीला करें, श्रीप्रिया जी के साथ और अन्य सखियों के साथ, सखाओं के साथ और गौओं के साथ गोचारण आदि करें, दान मांगे, लेते हैं, दौड़े, खेले, खाए और उन्हीं के फूलों से श्रृंगार किया जाए, और कण कण में और अंतिम लीला उनकी है वो लीला जब वर्षा होने लगी इंद्र के द्वारा, तो उस समय श्री कृष्ण अब चरण का स्पर्श का प्रमोद तो दिए थे, उन्होंने सोचा कि इसको चरण से छुआ काड़ा ठीक नहीं है, ये तो हमारा पूज्य गिरिराज, तो उन्होंने अपने कर कमल पर धारण किया, तो हाथ पर धारण किया, 7 दिन 7 रात ने सुंदर हाथ पर धारण किया, उंगली पर धारण किए, फिर हाथ पर लेकर के उतारे। तो इस तरह से गिरिराज वास्तव में श्री कृष्ण हैं और भगवान के श्री कृष्ण के दासों में सबसे श्रेष्ठ। इनके आश्रय से मनोरथ सफल होता है। जो व्यक्ति चाहता है कि हमें कृष्ण मिले, कृष्ण प्रेम मिले, तो उसे गिरिराज जी का सेवन करना चाहिए, परिक्रमा आदि करना, दर्शन करना। इस तरह से ये वेणु गीत में यहां पर वेणु गीत के कई श्लोक हैं, जिसमें इस श्लोक में और पुरणा पुलिंद उर्गाय पदाब जलागा श्री कुंक में दैतस्तन मंडित, उस श्लोक में वेणु बजाने का उल्लेख नहीं है, 2 श्लोक में, लेकिन वो तो श्री कृष्ण वेणु के साथ ही सारी लीलाएं कर रहे हैं, अपने आप समझ ही लेना चाहिए। गिरिराज जी के विषय में वर्णन करना भी वेणु गीत है, पुलिंदियों के सौभाग्य का वर्णन करना भी वेणु गीत है। वेणु गीत वास्तव में क्या है इस किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण बांसुरी में गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं ये तो गोपियों को ही केवल पता है। सुखदेव गोस्वामी तय कहते हैं उन लोगों ने सुना है और सुन करके वर्णन करना चालू किया तो क्या गा रहे थे इसका तो वर्णन हुआ नहीं। वेणु गीत का प्रभाव क्या क्या हुआ, कैसे कैसे, इसका वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वर्णन कर रहे हैं मतलब गोपियों के गीत द्वारा, सॉरी। तो इस तरह से आज तक पता नहीं लगा कि वेणु गीत क्या गाया है श्री कृष्ण ने, वो तो अद्भुत बात है। परंतु उन्होंने जो बांसुरी में गाया, जो बांसुरी बजाया, उसके विषय में कोई कुछ कहे या कृष्ण के भी विषय में कुछ कहे, वो सब वेणु गीत है। इस टॉपिक से सिद्ध हो रहा है कृष्ण के विषय में जो कुछ कहा जाए वेणु गीत है या कृष्ण गीत है। बीच बीच में आया है श्रुत्वा च तत् क्वणित वेणु विचित्र गीतम, कहीं कृष्ण गीतम, कृष्ण गीत है वेणु गीत, अरे वेणु श्रेणु में क्या है, वो कृष्ण गा रहे थे उसमें वही वास्तविक प्रभावशाली हो रहे थे। बंगला में एक कविता में लिखे हैं, मैं भूल रहा हूं, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं केवल फुकेर जोरे मोरे कलराओ, बांसुरी कहती है कि अरे हम में क्या है, केवल फूकेर जोरे मोरे कल रहा हूं, तो फूकने वाला कुछ इस ढंग से फूक रहा है कि कल शब्द निकल रहा है, मधुर शब्द निकल रहा है, नहीं तो उसी बांस से आदमी आग भी दजकाता है ना तो उसमें कोई स्वर आदि तो होता नहीं है, फूकता है तो फूकने वाले की विशेषता है। श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं और वो भी वेणु बजाते हैं केवल इसी धाम में, केवल वृंदावन धाम में, ब्रज में बजाते हैं, और कहीं बजा ही नहीं सकते। यदि भक्त लोग ऐसे दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी का हमेशा भाव यही किया था, बेणु मुख है, मोर पंख धारण किए हैं, परंतु वास्तव में बांसुरी तो यहां तो बिना बांसुरी के रहते ही नहीं, वहां बांसुरी का धारण करेंगे हाथ ही पूरा नहीं दिखाते हैं। वैसे तो ब्रजेंद्र नंदन ही है, साक्षात कोई अंतर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ब्रज धाम जो है वास्तव में विलक्षण और भगवान की लीला भूमि देव की त्यों है, कुछ चीज अचल है, भगवान के धाम में गोलोक में नहीं गए, जैसे जमुना जी, गिरिराज जी और यहां की राज वही है, वही राज है जिसको श्री कृष्ण ने अपने चरण से धन्य किए हैं, वही जमुना जी हैं और गिरिराज जी वही हैं जिसको उन्होंने अपने करकमल पर धारण किया और जिसमें उन्होंने विविध लीला किया, विहार किया। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है उस जीव का कि भगवान के डायरेक्ट लीला के उपकरण को आकर के प्रणाम करना, यहां से छूना, परिक्रमा करना, इन्हीं सब क्रियाओं द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होता है। और उस पर भी यदि गोपीजनों के मुख से सुना जाए तो प्रीतम श्याम सुंदर के विषय में या गिरिराज जी के विषय में, जमुना जी के विषय में क्या कहती है, नद्या तदुपधार मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगम, नदी का भी वर्णन किया है यहां पर, अद्रि गोवर्धन जी का वर्णन कर रहे हैं, और भी पर्वत है ब्रज में, वे सब हरिदास हैं, उनमें भी लीलाएं होती ही रहती हैं। गिरिराज जी हरिदास वंश है सबसे श्रेष्ठ। तो इस प्रकार ब्रज का एक एक कण है श्री कृष्ण की लीला से संपृक्त है, संबंधित है सब कुछ। और यदि कोई व्यक्ति दूसरा प्रवचन करे तो आदमी कहेगा इसमें भावुकता हो सकती है, लेकिन ये प्रवचन श्री गोपिकाओं का है। हंताय मद्रि रबला हरिदास वर्ज जदराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयस्तयोर्ज पानीय सूयव स्कंदन कन्दम। ये है गिरिराज जी का सौभाग्य, और सर्वाति साई सौभाग्य तो श्री गोपी जनों का है जो सब जगह सबको कृष्ण प्रेम से भरपूर देख रहे हैं। और हम लोगों का भी सौभाग्य है कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, श्री राधा रानी के उद्गार को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और भगवान कृष्ण के लीला भूमि में रहने को मिलता है, ये भी हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है। हरे कृष्ण।